एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और ज्ञान गोष्ठी में सभी सुनने वालों का स्वागत है।
आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने कह सकते हैं अनगिनत लोगों की सोच को बदला है। कार्ल यूंग की मैन इन हिज सिंबल्स,
हाँ, हिंदी में से मानव और उसके प्रतीक, या मानवीय और प्रतीक भी कहते हैं।
और ये कोई सिर्फ अकादमिक चर्चा नहीं होने वाली है ना?
बिल्कुल नहीं। यूंग ने इसे अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिर में आम लोगों के लिए लिखा था, और आज के समय में जब बहुत से लोग एक तरह की बेचैनी या जीवन में अर्थ की तलाश या शायद एक खालीपन सा महसूस करते हैं, तो उसे देखते हुए ये किताब शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है।
हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी जड़ों से कहीं कट गए हों। यूंग का मानना था कि ये जड़ें हमारे अपने मन के गहरे अचेतन हिस्सों में हैं,
और हमारा संपर्क टूट गया है उनसे।
बिल्कुल, और ये किताब उसी टूटे हुए संपर्क को फिर से साधने का एक नक्शा है, एक रास्ता दिखाती है। हमारे पास इस किताब के दो बहुत अच्छे सारांश हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसके जो सबसे जरूरी, सबसे कोर विचार हैं, वो आप तक पहुंचा सकें।
तो चलिए मन की इस अनदेखी दुनिया की यात्रा शुरू करते हैं। अच्छा, इस विषय पर बात करने के लिए कार्ल गुस्ताफ यूंग से बेहतर और कौन हो सकता है भला? उनका समय था 1875 से 1961।
सही बात है, स्विट्जरलैंड के ये मनोचिकित्सक जिन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की नींव रखी, वो सिर्फ एक विचारक नहीं थे ना, वो एक तरह के खोजकर्ता थे मन के रहस्यों के।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो शुरुआत में सिगमुंड फ्रॉयड के बहुत करीबी माने जाते थे, जैसे उनके उत्तराधिकारी हों।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है।
लेकिन फिर मन की प्रकृति को लेकर, खासकर अचेतन की समझ को लेकर, उनके रास्ते अलग हो गए। फ्रॉयड ने अचेतन को मुख्य रूप से हमारी दबी हुई इच्छाओं का, खासतौर पर यौन इच्छाओं का भंडार माना था।
पर यूंग का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने कहा कि अचेतन सिर्फ हमारी व्यक्तिगत दबी हुई चीजों का कूड़ेदान नहीं है, इसमें एक गहरा साझा स्तर भी है जिसे उन्होंने सामूहिक अचेतन कहा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस।
ये पूरी इंसानियत की साझी विरासत है,
जन्मजात पैटर्न
या आर्किटाइप होते हैं इसमें, है ना?
बिल्कुल,
ये वो खाके हैं जिनके आधार पर हम दुनिया को समझते हैं, महसूस करते हैं।
बिल्कुल, और यूंग की एक और खास बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो सिर्फ इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते थे कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं,
हाँ,
बल्कि इसमें भी कि वे पूर्ण कैसे बन सकते हैं। उनकी रुचि रचनात्मकता, आध्यात्मिकता, आत्मखोज, इन सब में थी।
और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी उनके लिए। यूंग ने खुद एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक संकट झेला था, और उसके बाद उन्होंने अपने ही अचेतन की गहराइयों में उतरकर इन प्रतीकों की जो बदलने वाली शक्ति है, उसका फर्स्ट हैंड अनुभव किया था।
सोचिए, दशकों का क्लिनिकल काम, हजारों मरीज, और साथ में दुनिया भर के मिथकों, धर्मों, कला, मानव विज्ञान का गहरा अध्ययन,
ये सब मिलकर उन्हें इस विषय पर लिखने के लिए एक बहुत ही यूनिक आवाज बनाते हैं।
और जैसा आपने शुरू में कहा, ये उनकी आखिरी किताब थी, और इसे उन्होंने बड़ी मेहनत से आम पाठक के लिए तैयार किया।
हाँ, कहते हैं एक बीबीसी इंटरव्यू हुआ था उनका, जिसके बाद लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया आई, और फिर उन्हें एक सपना आया जिसने उन्हें यकीन दिलाया कि भाई, अपने जीवन भर के काम को सरल भाषा में दुनिया तक पहुंचाना ही होगा।
और उन्होंने इसे अकेले नहीं लिखा है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने सबसे करीबी और काबिल सहयोगियों के साथ मिलकर लिखा। मारी लुईस वॉन फ्रांस, जोसेफ एल हेंडरसन, योलांडा याकूबी और अनिला याफे, हर किसी ने अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से एक एक हिस्सा लिखा,
ताकि यूंग के जो जटिल विचार है वो स्पष्टता और गहराई के साथ सामने आ सके।
हाँ, तो अब आते हैं किताब के दिल पर। इसका केंद्रीय विचार क्या है?
ये किताब कहती है कि हम जो खुद को जानते हैं, हमारा चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड, वो तो बस सतह है, समंदर की ऊपरी लहरें समझ लीजिए।
असली गहराई तो नीचे है, अचेतन में, अनकॉन्शियस में।
और ये अचेतन मन हमसे सीधी लॉजिकल भाषा में बात नहीं करता।
बिल्कुल,
उसकी अपनी एक भाषा है, प्रतीकों की भाषा, सिंबल्स की भाषा। और यहीं पर यूंग का काम इतना मौलिक हो जाता है। वो कहते हैं कि प्रतीक सिर्फ किसी चीज का निशान या चिन्ह, मतलब साइन, नहीं है।
हाँ, ये अंतर समझना जरूरी है।
चिन्ह तो किसी जानी पहचानी चीज की तरफ इशारा करता है, जैसे ट्रैफिक की लाल बत्ती, मतलब है रुको, एक निश्चित अर्थ है उसका। लेकिन प्रतीक तो किसी ऐसी गहरी, जटिल, रहस्यमयी चीज की तरफ इशारा करता है जिसे पूरी तरह शब्दों में बांधना मुश्किल है.
जैसे?
जैसे मान लीजिए किसी सपने में आया शेर, या अलग अलग संस्कृतियों में दिखने वाला गोल घेरा, मंडल जिसे कैसे हैं, मैंडला.
अच्छा,
ये सिर्फ जानवर या ज्यामिति आकृति नहीं है, ये बहुत कुछ और दर्शाते हैं, शक्ति, संपूर्णता, जीवन का चक्र वगैरह. प्रतीक अर्थ को छिपाते नहीं, बल्कि उसके एक ज्यादा ऊंचे, ज्यादा जटिल स्तर को उजागर करते हैं.
और युंग का बड़ा सवाल यही था. आज के इस बेहद तार्किक वैज्ञानिक युग में, जहां हमने मिथकों और रस्मों रिवाजों को जैसे पीछे छोड़ दिया है, हम इंसान अपने मन की इन गहराइयों से वापस कैसे जुड़ें?
ताकि हम मनोवैज्ञानिक रूप से बिखरा हुआ महसूस न करें, बल्कि पूर्ण महसूस करें, साइकोलॉजिकली होल,
और जीवन में एक सार्थकता पाएं.
उनका जवाब था अपने प्रतीकों को समझकर, चाहे वो सपनों में आए
या फिर हमारी रोजमर्रा की कल्पनाओं में. युंग ने चेतावनी दी कि आधुनिक समाज ने तर्क और बाहरी दुनिया पर इतना ज्यादा जोर दिया है कि हमने अपने भीतर की इस प्रतीकात्मक दुनिया को लगभग भुला दिया है.
और इसका नतीजा?
नतीजा है एक तरह का व्यापक मनोवैज्ञानिक तनाव, अकेलापन और आध्यात्मिक खालीपन.
तो ये किताब इसी खोए हुए कनेक्शन को फिर से बनाने का एक गाइड है.
और इसका सबसे सीधा रास्ता यूं के अनुसार हमारे सपने हैं, ड्रीम्स.
हाँ, अक्सर हम सपनों को बस रात की ऊटपटांग घटना समझकर भूल जाते हैं. सोचते हैं, अरे क्या फालतू सपना देखा.
जबकि यूं कहते हैं कि रुकिए, सपने फालतू नहीं है, बिल्कुल नहीं. वे हमारे अचेतन मन के ईमानदार, कुदरती और उद्देश्यपूर्ण संदेश हैं.
ये दिमाग की रैंडम फायरिंग नहीं है, ये हमारी अंदरूनी दुनिया की आवाज है.
और सपनों का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है क्षतिपूर्ति करना, कॉम्पनसेशन.
क्षतिपूर्ति, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा और समझाएंगे?
हाँ, देखिए, क्षतिपूर्ति का मतलब है संतुलन बनाना. अगर हमारा चेतन मन यानी हमारी जागृत सोच किसी एक दिशा में बहुत ज्यादा झुक गई है या किसी जरूरी बात को नजरअंदाज कर रही है,
तो सपना उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है.
बिल्कुल. एक उदाहरण लें, कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया है, उसे शायद सपने में दिखे कि वो कहीं ऊंचाई से गिरा है.
अच्छा,
ये अचेतन की तरफ से एक प्रतीकात्मक चेतावनी है, थोड़ा विनम्र बनो, जमीन पर रहो.
या जैसे कोई व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को बहुत दबाता है, शायद उसे सपने में पानी, बाढ़ या तूफान दिखे.
हाँ, बिल्कुल, हो सकता है ये दबी हुई भावनाओं के दबाव को दर्शा सकता है. तो सपने एक तरह से हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए संतुलन बनाने वाले एक मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं.
बहुत दिलचस्प. और सपनों को समझने के लिए युंग ने अचेतन के दो स्तर बताए थे, है ना?
हाँ, पहला है व्यक्तिगत अचेतन, पर्सनल अनकॉन्शियस. इसमें हमारी अपनी भूली हुई यादें, अनुभव, दमित इच्छाएं या वो बातें होती हैं जिन्हें हमने नजरअंदाज किया है. ये हमारे जीवन के दौरान इकट्ठा होता है.
और दूसरा स्तर, वो जो बहुत क्रांतिकारी विचार था,
वो है सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस. ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की साझी मनोवैज्ञानिक विरासत है. ये जन्मजात है, हमारे अंदर पहले से मौजूद.
और इसमें होते हैं वो सार्वभौमिक मानवीय अनुभव और पैटर्न, जिन्हें युंग ने आर्किटाइप कहा.
आर्किटाइप्स, हाँ, ये वाकई एक बहुत ही आकर्षक कॉन्सेप्ट है. ये मूल सार्वभौमिक पैटर्न्स हैं, छवियां हैं या सोचने महसूस करने के तरीके हैं जो सामूहिक अचेतन से उपजते हैं.
और ये किसी एक संस्कृति या समय तक सीमित नहीं है?
बिल्कुल नहीं. जैसे हीरो या नायक का आर्किटाइप, जो चुनौतियों का सामना करता है, बुराई से लड़ता है.
या शैडो यानी छाया का आर्किटाइप, हमारे व्यक्तित्व का वो अंधेरा हिस्सा जिसे हम छिपाते हैं.
और भी हैं, जैसे एनिमा, पुरुष के भीतर स्त्रीत्व का आंतरिक पहलू, और एनिमस, स्त्री के भीतर पुरुषोत्व का आंतरिक पहलू.
या फिर बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति या बुद्धिमान बुढ़िया का आर्किटाइप, जो ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतीक है.
और इन सब के केंद्र में है सेल्फ का आर्किटाइप,
सेल्फ,
जो मनोवैज्ञानिक संपूर्णता, संतुलन और एकता का प्रतीक है.
ये आर्किटाइप सिर्फ हमारे निजी सपनों में ही नहीं दिखते, आप इन्हें दुनिया भर की पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, धर्मों, साहित्य और कला में बार बार उभरते हुए देखेंगे, है ना?
बिल्कुल, ये इंसान होने के बुनियादी अनुभवों के खाके हैं. चलो कुछ प्रमुख आर्किटाइप्स पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, जिनका जिक्र किताब में है.
हाँ जरूर. जैसे शैडो या छाया, ये हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हम देखना या स्वीकार करना नहीं चाहते.
मतलब?
मतलब हमारी कमजोरियां, हमारा गुस्सा, ईर्ष्या, शर्मिंदगी वाली इच्छाएं, डर, यहां तक कि हमारी वो सकारात्मक क्षमताएं भी जिन्हें हमने शायद विकसित ही नहीं किया।
अच्छा, पॉजिटिव चीजें भी?
हाँ, यूं कहते हैं कि अपनी शैडो को जाने और स्वीकार किए बिना हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते।
और अक्सर हम अपनी शैडो को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं, है ना? मतलब जो बुराई हमें अपने अंदर नहीं दिखती, वो हमें दूसरों में बहुत ज्यादा नजर आती है और परेशान करती है।
बिल्कुल, ये बहुत आम है। और एनिमा या एनिमस, ये क्या है?
ये हमारे भीतर विपरीत लिंग के मनोवैज्ञानिक गुण हैं। पुरुषों में एनिमा यानी भावनाओं को महसूस करने, रिश्ते बनाने, सहज ज्ञान की क्षमता, और स्त्रियों में एनिमस तर्क करने, मुखर होने, दुनिया में अपनी जगह बनाने की क्षमता।
यूं हम मानना था कि इन्हें समझना और अपने व्यक्तित्व में इंटीग्रेट करना न सिर्फ आत्मसमझ के लिए जरूरी है बल्कि स्वस्थ और संतुलित रिश्ते बनाने के लिए भी अनिवार्य है।
हाँ, कहते हैं कि अक्सर प्रेम में पड़ने की शुरुआत इसी आर्किटाइप के प्रोजेक्शन से होती है। हम अपने अंदर के आदर्श को दूसरे पर देख लेते हैं।
दिलचस्प। और फिर सेल्फ।
हाँ, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण आर्किटाइप है। ये अहंकार या ईगो नहीं है, बल्कि ये व्यक्तित्व का वो केंद्रीय बिंदु है जो चेतन और अचेतन को, सारे विरोधी पहलुओं को एक साथ लाता है, उनमें संतुलन बनाता है।
ये मनोवैज्ञानिक समग्रता और पूर्णता का प्रतीक है।
बिल्कुल, सपनों में ये अक्सर मंडल या मांडाला जैसी गोलाकृतियों, कीमती रत्नों, क्रिस्टल या दिव्य आकृतियों के रूप में प्रकट होता है, जो व्यवस्था, एकता और केंद्र का प्रतीक है।
तो इन सब आर्किटाइप से सामना करना, उन्हें समझना और अपने जीवन में एकीकृत करना, यही प्रक्रिया व्यक्तिकरण या इंडिविजुएशन कहलाती है।
हाँ बिल्कुल, ये यूंग के मनोविज्ञान का केंद्रीय लक्ष्य है, पर ये कोई वीकेंड वर्कशॉप जैसा नहीं है।
नहीं नहीं, ये तो जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है।
सही कहा, इसका मकसद है एक अविभाजित यानी इनडिवाइडेड, पूर्ण, अद्वितीय और प्रामाणिक व्यक्ति बनना।
ये परफेक्शन या सिद्धता पाना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने सभी हिस्सों को, अच्छे और बुरे, चेतन और अचेतन, स्त्री और पुरुष गुणों को सचेत रूप से जानना और अपनाना है। यूंग इसे जीवन का सबसे जरूरी और सबसे सार्थक काम मानते थे।
ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए हम वो बनते हैं जो हम असल में हैं।
और ये सिर्फ हमारे निजी मन की बातें नहीं है। किताब में जोसेफ हेंडरसन बताते हैं कि कैसे प्राचीन मिथक जैसे हीरो की यात्रा,
हाँ वो तो बहुत प्रसिद्ध है,
नायक का असाधारण जन्म, फिर संघर्ष और राक्षसों से लड़ाई,
जो शायद हमारी आंतरिक शैडो या बाहरी चुनौतियों का प्रतीक हो सकते हैं।
बिल्कुल, फिर किसी खजाने या राजकुमारी को पाना,
जो आत्मज्ञान या एनिमा के एकीकरण का प्रतीक हो सकता है,
और फिर वापस अपने समुदाय में ज्ञान लेकर लौटना। ये कहानियां आज भी हमारे लिए गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई रखती हैं।
हाँ, ये मिथक जैसे पूरी मानवता के सामूहिक सपने हैं। वे हमें जीवन के जरूरी पड़ावों, संघर्षों और विकास की प्रक्रिया को समझने का एक ढांचा देते हैं।
और एनीला या फिर कला में प्रतीकों की भूमिका पर बात करती हैं। सोचिए, हजारों साल पुरानी गुफाओं की चित्रकारी से लेकर आज की मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट तक,
कला हमेशा से सामूहिक अचेतन की गहराइयों से उपजी छवियों और प्रतीकों को व्यक्त करने का एक जरिया रही है।
वृत्त यानी सर्कल, संपूर्णता, चौराहा, निर्णय, पत्थर, स्थायित्व, अनंतता, पेड़, जीवन, विकास, पशु, हमारी सहज प्रवृत्ति, ये प्रतीक कला में बार बार लौट के आते हैं।
यहाँ तक कि आधुनिक कला, जो कई बार हमें अजीब या तर्कहीन लगती है, वो भी अक्सर कलाकार के अचेतन मन से निकली प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है।
हाँ, कलाकार शायद खुद भी ना जानता हो कि वो क्या बना रहा है, पर वो उन आर्किटाइपल छवियों को रूप दे रहा होता है जो तर्क की दुनिया से कटे हुए हमारे गहरे हिस्सों से सीधे संवाद करती हैं।
यहीं पर किताब आधुनिक दुनिया के एक संकट की तरफ भी इशारा करती है, है ना?
हाँ बिल्कुल, हमने तर्क, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और भौतिक चीजों पर इतना ज्यादा जोर दिया है कि हमने अपने जीवन के दूसरे जरूरी पहलुओं को,
जैसे सहज ज्ञान, भावनाएं, आध्यात्मिकता और प्रतीकात्मक अनुभव,
हाँ, इनको कम आका है या नजरअंदाज कर दिया है।
और इसका नतीजा दुनिया थोड़ी मोह भंग सी हो गई है, डिसएंचेंटेड, जैसे उसका जादू कहीं खो गया हो।
लोग अक्सर दिशाहीन, अकेला और बेचैन महसूस करते हैं। यूंग मानते थे कि हमने अपने सामूहिक मिथकों को खो दिया है, और शायद इसीलिए जीवन में गहरे अर्थ की भावना भी कमजोर पड़ गई है।
यूंग का एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार है विरोधाभासों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स।
हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व और संतुलित होने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व के विरोधी बलों को, जैसे चेतन और अचेतन,
तर्क और भावना, स्त्रीत्व और पुरुषत्व, अच्छाई और बुराई,
व्यक्तिगत जरूरतें और सामूहिक जिम्मेदारियों, इन सबको एक साथ लाना सीखना होगा। किसी एक को चुनकर दूसरे को दबाना नहीं।
और प्रतीक अक्सर यही काम करते हैं। वे ऐसी छवियां प्रस्तुत करते हैं जिनमें विरोधाभास एक साथ मौजूद होते हैं। ये हमें उस तनाव को समझने और साधने में मदद करते हैं।
बिल्कुल, संपूर्णता का मतलब ही है इन दोनों पहलुओं को धारण करना। अच्छा, इस किताब और यूंग के काम में से कई विचार हैं जो रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ यादगार विचारों या कह सकते हैं कोट्स का सार साझा करते हैं?
हाँ जरूर। एक तो बहुत ही प्रसिद्ध है, आपने भी सुना होगा, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, यह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे।
कितना गहरा ये
है ना। मतलब अगर हम अपने मन के छिपे हुए पैटर्न, अपनी दबी हुई इच्छाओं, अपने डर, अपने कॉम्प्लेक्स, इनको नहीं समझेंगे तो वे अनजाने में हमारे फैसले लेंगे, हमारे व्यवहार को चलाएंगे।
और हम सोचते रहेंगे कि ये सब तो किस्मत है, या हालात ऐसे थे, या फलाना जिम्मेदार है।
बिल्कुल, आत्मज्ञान ही हमें इस अदृश्य डोर से थोड़ी आजादी दिला सकता है।
सही कहा। और दूसरा ये, दूसरों के बारे में जो कुछ भी हमें परेशान करता है वो हमें खुद को समझने में मदद कर सकता है।
ये प्रोजेक्शन वाली बात।
हाँ, प्रक्षेपण। अक्सर जिन बातों पर हमें दूसरों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या जो बातें हमें उनमें खटकती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ही व्यक्तित्व के अनजाने, अस्वीकृत या अविकसित हिस्से होते हैं, हमारी अपनी शैडो।
तो अगली बार जब किसी पर बहुत चिढ़ाए तो शायद रुककर पूछना चाहिए, ये मेरे बारे में क्या कह रहा है।
हाँ, ये आत्मखोज का एक अनूठा रास्ता हो सकता है।
बहुत खूब। और व्यक्तिकरण या इंडिविजुएशन के बारे में ये कथन तो जैसे जीवन का लक्ष्य ही बता देता है। जीवन भर का सौभाग्य है वह बनना जो आप वास्तव में है।
ये बाहरी सफलता या दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये अपनी अनूठी क्षमता को, अपनी असलियत को खोजने और जीने की आजीवन यात्रा है।
आसान नहीं, पर शायद सबसे बड़ा सौभाग्य।
और आखिर में ये विचार आत्म स्वीकृति की मुश्किल चुनौती को सामने रखता है। सबसे भयानक बात है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना।
उफ।
ये दिखाता है कि व्यक्तिकरण के लिए हिम्मत चाहिए, अपने व्यक्तित्व के उन हिस्सों का सामना करने और उन्हें अपनाने की हिम्मत जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिनसे हमें शर्म आती है या जो हमें डरावने लगते हैं।
लेकिन यूंग के अनुसार यही मुश्किल कदम सच्ची मनोवैज्ञानिक सेहत और संपूर्णता की ओर ले जाता है।
तो ये सब गहरे विचार तो हैं, लेकिन सवाल उठता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या मतलब है, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है, वरना ये सब बातें हवा हवाई लगेंगी।
हाँ, तो पहला और सबसे सीधा तरीका तो यूंग सुझाते हैं, अपने सपनों पर ध्यान देना।
ड्रीम जर्नल बनाने वाली बात।
हाँ, शायद एक ड्रीम जर्नल बनाना शुरू कर सकते हैं। सुबह उठकर जो भी सपना याद हो उसे लिख लें। सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उसमें आई छवियां, भावनाएं, रंग, सब कुछ।
फिर सोचें कि ये मेरे आज के चेतन नजरिए की भरपाई कैसे कर रहा है, ये किस अनदेखे पहलू पर रोशनी डाल रहा है।
बिल्कुल, ये अपने अचेतन के साथ एक संवाद शुरू करने जैसा है।
दूसरा, अपनी शैडो को जानने और स्वीकार करने की कोशिश करना।
कैसे?
ध्यान दें कि किन बातों पर आपको दूसरों में तीव्र प्रतिक्रिया होती है,
किन चीजों से आप बचते हैं,
किन गुणों की आप दूसरों में बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं।
अच्छा,
हो सकता है उनमें आपकी अपनी छिपी हुई शैडो की झलक हो। उन्हें जानना और धीरे धीरे स्वीकार करना आपको ज्यादा संतुलित, सहनशील और आत्म जागरूक बना सकता है। ये आसान नहीं है, पर जरूरी है।
हाँ, ये तो है। और रिश्तों को बेहतर बनाने में भी ये समझ काम आ सकती है।
कैसे?
एनिमा, एनिमस वाली बात।
हाँ, एनिमा और एनिमस के प्रोजेक्शन को समझना खासकर रोमांटिक रिश्तों में बहुत मदद कर सकता है। जब हम ये पहचानते हैं कि शुरुआती आकर्षण में हम अक्सर अपने अंदर के आदर्श को दूसरे व्यक्ति पर थोप देते हैं,
तो हम उस व्यक्ति को उसकी असलियत में देख पाते हैं।
बिल्कुल, इससे अवास्तविक उम्मीदें कम होती हैं और ज्यादा गहरी सच्ची अंतरंगता की गुंजाइश बनती है। और हाँ, कला, साहित्य, फिल्मों, मिथकों को एक नई नजर से देखना, अब जब हम ये आर्केटाइप्स जानते हैं।
हाँ, आप उनमें आर्केटाइपल पैटर्न पहचानना शुरू कर सकते हैं। हीरो की यात्रा, शैडो का टकराव, मार्गदर्शक की भूमिका, प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति,
ये न सिर्फ हमारे सांस्कृतिक अनुभवों को ज्यादा गहरा और अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि हमें ये भी दिखाता है कि इंसान होने के ये अनुभव कितने सार्वभौमिक हैं।
सही कहा, ये मनोरंजन को आत्मखोज का साधन बना सकता है, और शायद सबसे रचनात्मक अनुपयोग है अपने जीवन की कहानी या व्यक्तिगत मिथक को समझना और बनाना।
मतलब
अपने सपनों, कल्पनाओं, जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों और बार बार आने वाले पैटर्न को देखकर आप अपने जीवन को एक दिशा और अर्थ दे सकते हैं जो सिर्फ बाहरी मानकों पर आधारित ना हो,
बल्कि आपकी अपनी आंतरिक सच्चाई से निकला हो।
हाँ, ये आपको एक ऐसी कहानी देता है जो आपको रास्ता दिखाए और मुश्किल समय में संबल दे।
मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि हम इंसान सिर्फ सोचने वाले प्राणी नहीं हैं, हम मूल रूप से महसूस करने वाले और प्रतीकात्मक प्राणी हैं।
बिल्कुल,
हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, हमारी रचनात्मकता और जीवन में अर्थ की हमारी तलाश, इन सब के लिए अपने मन की गहराइयों से, अपने अचेतन से एक जीवंत और सचेत रिश्ता बनाए रखना बेहद जरूरी है।
हाँ, प्रतीकात्मक अनुभव को सिर्फ अंधविश्वास या बचपना कहकर खारिज कर देना जीवन को बहुत सपाट और बेरंग बना देता है। यूंग के विचार हमें याद दिलाते हैं कि असली विकास सिर्फ तर्क और इच्छा शक्ति से नहीं होता।
इसके लिए हमें चेतना के उन रचनात्मक, रहस्यमय, कभी कभी डरावने लेकिन हमेशा परिवर्तनकारी पहलुओं से जुड़ना पड़ता है,
जो प्रतीकों के जरिए हमसे बात करते हैं। लक्ष्य परफेक्शन नहीं बल्कि संपूर्णता है, अपने सभी हिस्सों को, उजाले और अंधेरे को गले लगाना।
तो हम अपने श्रोताओं को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं जिस पर वो चाहें तो विचार कर सकते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा सपना, कोई ऐसी छवि, कोई ऐसा प्रतीक है जो बार बार आपके सामने आता है?
शायद कोई जानवर, कोई जगह, कोई आकृति, कोई रंग।
हाँ, जिसे आपने शायद अब तक नजरअंदाज किया हो या महत्वहीन समझा हो। जरा सोचिए, वो आपके बारे में, आपकी आंतरिक दुनिया के बारे में या आपके जीवन के इस मोड़ पर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हो सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।